ओम शांति। आज बाबा ने सवेरे की मुरली में बहुत ही सुंदर बात बताई थी। बाबा ने कहा था कि रमता योगी वो जिसके अंदर ज्ञान और अनुभव की शक्ति हो। तो आप लोगों को मालूम होगा कि साकार बाबा के होते बाबा ने ये बहुत ही सुंदर टाइटल हमारे दादी जानकी को ही दिया था, तो वो तो आपको जरूर अपना अनुभव सुनाएंगे। परंतु साथ ही साथ जब अनुभव की बात आज मैं सुन रही थी मुरली में, तो मुझे याद आया कि कई बार बाबा कहते हैं कि यदि आप अनुभव की शक्ति अपने में धारण करेंगे, ये ही है सबसे बड़ी अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी के सामने आपकी हर समय विजय जरूर होंगी, कोई भी बात में आपका कभी हार नहीं हो सकता। तभी फिर मुझे विचार आया कि आज इस टॉपिक को हम थोड़ा इस पर चर्चा करें कि अनुभव की अथॉरिटी क्या है। और मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि जो भी बाबा के बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं, जरूर उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त किया होता, उस आधार पर वो यात्रा करके यहाँ आकर के पहुँचते हैं। यदि कोई बात का अनुभव न होता तो आज आप यहाँ हाजिर न होते। और मधुबन में आते हैं अपने अनुभव को और आगे बढ़ाने के लिए। जितना अनुभव आज तक हुआ वो हमें यहाँ तक लाया, परंतु हम यहाँ आते ही हैं अनुभव करने के लिए। तो किस चीज का अनुभव? और ये भी मुझे मालूम है कि यदि अनुभव नहीं है तो पूर्ण रीति से हमारा विश्वास भी नहीं बैठ सकता। मानो कि यदि सिर्फ ज्ञान थ्योरी का होता, लॉजिकल लगता, हर बात समझ में भी आती है, परंतु यदि हम उस ज्ञान की शक्ति को अपने अनुभव में नहीं लाते हैं तो हमारा निश्चय कभी भी अचल, अडोल, अटल नहीं बन पाता। परंतु ज्ञान का आपने एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन में उसको अनुभव किया हुआ होगा, तो फिर आपके अंदर ऐसे अथॉरिटी होंगी कि कितना भी कोई आपको चैलेंज करे कि आप इस मार्ग पर क्यों चल रहे हो, कोई और मार्ग आप अपनाओ, तो आप जरूर कहेंगे कि परंतु ये मेरे अनुभव की बात है। जैसे कहते हैं ना कि मेरे खुद की आंखें देखी हुई बात है, मेरे खुद के कानों सुनी हुई बात है, तो हम और उस किस बात को कैसे मानेंगे। मैंने आंखों से देखा था, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, ऐसे कहते हैं ना। दूसरे किसी ने कुछ देखा हो आपको बताए तो आप उसमें कुछ शक ला सकते, किसी और ने कुछ बात सुनी हो वो आपको रिपीट करके सुनाए तो आप ये भी समझ सकते कि उसकी खुद भी कुछ और विस्तार किया हुआ है, एग्जैजरेशन किया है। परंतु जबकि आपने खुद कोई बात देखी है, कोई बात सुनी है, तो आप जरूर कहेंगे कि नहीं, ये मुझे अनुभव है कि ये बात ऐसी ही है और ये बात सही है। इसी प्रकार से ज्ञान का भी हमने कुछ टेस्ट किया है, हमने कुछ उसका अनुभव किया है, तो फिर हम किसी को भी बिल्कुल निरसंकोच कहेंगे कि परंतु ये तो मेरे अनुभव की बात है। तो हम कदम कदम पर, बाबा भी जो कहते हैं कि आप बाबा के ज्ञान की एक एक बात को अच्छी तरह से पहले तो आप उस बात पर सोचो, विचार करो, फिर उस बात को अच्छी तरह से समझो और फिर समझ करके उस बात का आप अनुभव करो। और आपने जो अनुभव किया होगा वो आपके दिल को तीर लग गया होगा। वैसे भी कहते हैं कि कोई भी बात सिर्फ हम सुनते हैं वो 10% वो रजिस्टर होती है, कोई बात हम अनुभव करते हैं उसका 90% असर होता, वो 10% का असर और वो 90% का असर। तो यदि हम अपने निश्चय को भी और मजबूत करने चाहते हैं तो उसमें दिमाग लड़ाने की बात नहीं आती है, उसमें अनुभव करने की बात आती है। मुझे याद आता कि जब मैं ज्ञान में आई तो पहले दिन ही जो मुझे आत्मा का ज्ञान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, परंतु जब मैंने आत्मा के ज्ञान का अनुभव किया तो फिर मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल हमारे लिए एक नया संसार खुल गया है। आज बाबा बता रहे थे ना जीते जी मरने का, बिल्कुल आत्मा को ऐसे अनुभव लगा कि बस ये देह तो बिल्कुल अलग है, ये तो बस पुरानी दुनिया की बातें ही अलग है, मुझे एक नया जीवन मिल गया। बिल्कुल आत्मा के ज्ञान के अनुभव से ही इतना सब कुछ हुआ। और फिर ये भी देखा गया है यदि हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता तो हमें परमात्मा का अनुभव भी नहीं हो सकता। तो कई बार बाबा के बच्चे ये मुख से शब्द कहते हैं, हम अनुभव नहीं करते हैं, योग का हमें अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसका भी मैं देखती हूँ कनेक्शन, जब तक कि आत्म स्थिति का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया हुआ होता तब तक हमारा योग तो यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, कभी इसको याद किया कभी इसको याद किया। परंतु जब हमने आत्म स्थिति का अभ्यास किया है, अनुभव किया है, तो उस आधार पर हमारा योग भी लग सकता और फिर जो परमात्मा हमें शक्ति देने चाहता हम वो शक्ति अपने में धारण कर सकते। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है अपने अनुभव की अथॉरिटी। आपको जबकि परमात्मा की शक्ति का अनुभव होगा तो आप जरूर ये बात कहेंगे कि इस शक्ति से और कौन सी शक्ति संसार में और महान हो सकती। और आप ये भी फिर कहेंगे कि जिसको हम ढूंढते थे अब हमें वो मिल गया। यदि परमात्मा का अनुभव हमें नहीं होता तो हाँ ज्ञान अच्छा भी लगता, हम चल भी रहे हैं और हमने इतना तक तो अपने जीवन में समझ करके धारण किया कि हमें यही मार्ग सही मार्ग लगता, हमें इसी मार्ग पर चलना है, तो उसका कुछ हमें फल तो जरूर मिलता। परंतु जबकि कोई भी चैलेंज आती है, कोई कठिनाई आती है सामने, तो उस समय हम उस बात को अच्छी तरह से पार नहीं कर सकते, हम कोई भी बात में अटक जाते। तो परमात्मा का अनुभव करना, आप सोचो कि इसी के लिए ही हम जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहे और अभी बाबा हमें इतने सुंदर रीति से पहले हमें कहता कि मैंने आपको चुन लिया, आप हमारे बन गए। और वो फिर अनुभव हम करते हैं परमात्मा ने कैसे हमें प्यार दिया, तो फिर हम भी कहते हैं कि हाँ जरूर हमको अपनी जीवन परमात्मा के हाथ में ही देनी है। तो मैं देखती हूँ कि आत्मा का अनुभव फाउंडेशन, परंतु उस आधार पर परम आत्मा का अनुभव। और परमात्मा के अनुभव में सर्व प्राप्ति। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने प्राप्ति को याद करो, अपने प्राप्ति को देखो। तो हमें यदि प्राप्ति होंगी तो ही तो हम उसको देख पाएंगे। और यदि हमने सिर्फ ज्ञान सुना परंतु हमने उसको प्रैक्टिस करके अनुभव नहीं किया, तब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आप सोचो, आपको किसी ने रेसिपी दी हो कि रसगुल्ला इस प्रकार से बनाना होता, आपने वो रेसिपी फॉलो करके बना तो लिया परंतु आपने उसको टेस्ट नहीं किया, तो आप ये गारंटी से नहीं कह सकेंगे कि हाँ ये तो सबसे अच्छी चीज है। परंतु आपने टेस्ट किया है तो आप कहेंगे। इसी तरह से परमात्मा ने भी परिचय अपना दिया, बुद्धि से हमने उस बात को माना, परंतु जब तक कि दिल में वो हमने अनुभव नहीं किया, तब तक हमारे भावना उस अनुसार नहीं आगे चल सकती। आप देखेंगे कि बुद्धि को हिलाने के लिए मनुष्य की बातें बहुत होती, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप कहेंगे हाँ तो ठीक है, परंतु जिस घड़ी कोई भी बात सामने आएंगी आपको कहेंगे देखो आप इस तरह से चल रही है, इस कारण से ये हुआ, तो आप भी थोड़े ढीले पड़ जाएंगे कि हाँ ये हो सकता कि इस कारण से ये बात हो रही है। परंतु आपने परमात्मा का अनुभव किया, परमात्मा किस प्रकार से सचमुच शांति का सागर है। नहीं तो मन हमारा शांत रहे एक सेकंड के लिए भी कलयुग के अंदर कभी हो सकता? ज्ञान से पहले भी आप लोगों ने कोशिश की होंगी कि हम अपने मन को शांत करें, हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखें। आप कर सके? नहीं कर सके। और यहाँ बाबा अपना शांति का अनुभव इतना सुंदर ढंग से कराते, बस आप बाबा के सामने बैठो और बाबा आपको एक और दुनिया में उड़ा के ले जाए, और बाबा आपको ऐसे प्रकाश के लाइट के स्थान पर ले जाते जहां पर आप और बाप। यदि आपने ये अनुभव किया है तो आप और इस अनुभव को बढ़ाते चले, और यदि आपने अनुभव ये नहीं किया है तो आप मधुबन में आए हैं तो मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप जरूर अमृत वेले चाहे कोई भी और समय आप बाबा के सामने बैठे, चाहे यहाँ हॉल में, चाहे बाबा के कमरे में, चाहे प्रकाश स्तंभ के पास, आप बस बाबा को शांति के सागर के रूप में सामने रख करके अपने आत्म स्मृति में अपने आप को स्थित करें, तो जरूर शांति का सागर आपको ऐसे खींच करके आपको अनुभव कराएगा जो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में यही जो हम शांति चाहते थे वो बाबा हमें न सिर्फ उसकी थोड़ी सी झलक का अनुभव कराते परंतु सागर बिल्कुल अपनी बड़ी दिल से फ्राक दिल से आपको हर प्रकार से सागर से जितना आप लूटने चाहो आप लूट सकेंगे। कभी कभी ये गीत बजता था ना मुरली में, प्यार का सागर हम एक बूंद के प्यासी हैं। तो बाबा कहते थे कि बच्चों को तो सागर मिला तो बच्चे एक बूंद से नहीं संतुष्ट हो सकते, हाँ ज्ञान का एक बूंद मिला उससे भी बहुत प्राप्ति होती, परंतु प्यार के सागर के सामने आओ और आपको सिर्फ एक बूंद प्यार का मिले, नहीं। बाबा तो प्यार का सागर आपको बिल्कुल सागर खोल करके आपको सब प्रकार का अनुभव कराएंगे, एक संबंध का नहीं परंतु सर्व संबंधों का आपको अनुभव कराएंगे। तो कहने का मतलब कि जो जो बाबा के गुण है मधुबन में खास, आपको और कोई काम धंधा तो है ही नहीं, बस एक एक गुण का आप टॉपिक लेकर के उस टॉपिक पर आप उस अनुभव में आप बिल्कुल मर्ज हो जाओ, लीन हो जाओ। बाबा ये शब्द कहते हैं ना कि लव लीन। तो एक तो है कि थोड़ा सा हमें प्यार का अनुभव हो, वो भी बहुत अच्छा, परंतु आप सागर में समा जाओ, आपको हर प्रकार से बाबा अपने आप में समा लेवे, आपको बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। परंतु आप अपने मन को खुला रख करके, अपने मन को स्थिर करके आप फिर बाबा के प्रेम में मस्त रहे, तो आपको जरूर ऐसे ही सागर का अनुभव होगा। तो जो हमारा लक्ष्य होता उस अनुसार ही हमें प्राप्ति होती। हमारी बुद्धि में और कई बातें होंगी, हम यहाँ बैठे भी और कुछ को याद कर रहे होंगे, तो हमें कैसे वो अनुभव हो सकता। परंतु बुद्धि में हमारा लक्ष्य है कि हमें ये अनुभव चाहिए, और कहीं बातें को हम न देखें न सुने, बस हर एक अपने ही पुरुषार्थ में मस्त रहे, तो जरूर आपको ये सब प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे ही। किसी ने दादी को उस दिन बोला कि हमारा योग नहीं लगता, तो दादी ने कहा कि जबकि आप बाबा के बच्चे बने हो तो ये आप शब्द ही न कहो, आपके मुख से ये शब्द शोभा ही नहीं देते। तो कहा कि जब आप यहां बैठे हो, जो संसार की बातें हैं आप बिल्कुल वहां संसार की बातें वहां छोड़ दो, अपना घर, अपना कारोबार, जो कुछ भी है, अब आप यहां हो, कारोबार वहां है, तो बस कारोबार को वहां रहने दो। बुद्धि से उसका आह्वान न करो, उसको याद न करो। और यदि आप यहां पर अपनी बुद्धि को हर बात से फ्री होकर के इसमें ही अपने आप को एकाग्र करेंगे, तो जो आपको अभी अनुभव होगा, इस अनुभव की शक्ति को आप लेकर के वहां अपने जीवन को अच्छा बना करके रख सकेंगे। यहां बैठे आपने वो बातें याद की, तो जो अब शक्ति भरने का समय मिला है वो आप उसको सफल नहीं कर पाएंगे, और फिर वहां जाकर के मुश्किल होगा। परंतु यहां सब बातें भूली हुई हो और बिल्कुल जो बाबा दे रहा है अपने में भर करके भरपूर हो जाना। तो मैं देखती हूं कि परमात्मा के अनुभव की बात सबसे ये बड़ी अथॉरिटी है। हमने परमात्मा को देखा, जाना, पाया, कितनी महान शक्ति, कितनी महान अथॉरिटी की ये बात है। कोई भी व्यक्ति किसी और लौकिक हिसाब से पावरफुल व्यक्ति से मिलके आता, उसको बहुत नशा रहता कि हम तो फलाने से मिलके आए, राइट? उसका सबको वर्णन करके बताते रहते हैं, उसके साथ फोटो लेकर के अपने घर में रख लेते हैं कि हम फलाने के साथ मिले। और बाबा हमको निमंत्रण देता है कि आप बच्चे आकर के मेरे साथ मिलो, आप मेरा अनुभव करो, और हम उस बात को थोड़ा सा भूल जाते हैं तो हमें वो बात की पहचान नहीं रहती और अनुभव नहीं होता उस प्रकार से। तो आत्मा का अनुभव बहुत महान शक्ति देने वाला। दूसरा, परमात्मा का अनुभव हमारे सारे जीवन परिवर्तन करने वाला। और फिर तीसरी बात, जबकि बाबा ने हमें कर्म फिलॉसफी की बात बताई है, जब हम कोई भी संकल्प करते, बोल बोलते अथवा कर्म करते, जिस क्वालिटी का ये सब चलता उस अनुसार उस व्यक्ति की पर्सनालिटी होती। ये बात सही है ना, राइट? जैसे जो व्यक्ति का बोल चाल, उनके संकल्प, उनके कर्म, उसकी पर्सनालिटी, उस हिसाब से हम मानते हैं। और जो पर्सनालिटी है उसी से ही अथॉरिटी का पता चलता है कि ये किस प्रकार की अथॉरिटी वाला व्यक्ति है। हम यूएन में कई बारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी का तो बहुत अच्छा स्टेटस है यूएन के अंदर, तो उस अनुसार जब हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं जो मुख्य सारा कार्य है, हम वहां तक पहुंच पाते हैं, तो किसी का नाम तो नहीं लगा हुआ होता है। हर एक अपना कार्य, मतलब अपना बैच तो होता है, परंतु हर एक अपने कार्य अनुसार सब कुछ करता, परंतु हमको दूर से ही पता चलता है व्यक्ति के पर्सनालिटी को देख करके कि ये कोई भी देश का प्रेसिडेंट आ रहा या प्राइम मिनिस्टर आ रहा। उनका यहाँ पर नाम नहीं लिखा होता, यहाँ पर नाम नहीं लिखा होता, परंतु पर्सनालिटी और उसके साथ में जिस तरह से जो उसके आजू बाजू वाले लोग होते हैं, उससे ही हमें पता चलता कि ये कौन व्यक्ति है। तो आप सोचो कि बाबा कहता है कि आप बाबा के बच्चे हो। बाबा कौन बाबा है? ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा है। तो जबकि आपको ये नशा रहेगा और ये अनुभव होगा कि हम उसके बच्चे हैं, तो आप सोचो आपका बोल चाल किस प्रकार से रहेगा। आज भी सवेरे बाबा परिवार की बहुत अच्छी तरह से बात स्पष्ट करते रहे। मात पिता कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, जगदम्बा कौन, और हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वरीय परिवार के हैं। सारे मुरली में बाबा ने कई बारी इस बात को स्पष्ट किया, तो उसमें भी मैंने देखा कि जब बाबा परिवार की बात बता रहे हैं और हमें ये बात याद दिला रहे हैं कि आप उसके हो, तो उस हिसाब से बोल चाल कार्य हमारे कैसे चल सकता, किस प्रकार से चले। आप देखेंगे कि बच्चा जन्म लेता और माँ बाप उसके उस ढंग से पालना करते और उसको हर प्रकार से याद दिलाते हैं कि आप किस कुल के हो, किस घराने के हो, किस परिवार के हो, ताकि उसके अंदर उस प्रकार के सभ्यता, उस प्रकार का कल्चर, उस प्रकार की रहन सहन, सब बातों की पहचान अपने आप ही आती रहे। और यदि माँ बाप उसको उस तरह की बातें न सुनाते तो उसको कैसे पता चले। परंतु जब उसको सुनाते हैं और वो उस बात को देखता, अनुभव करता, तो उसकी जीवन उस अनुसार बहुत ही सुंदर बनती जाती। तो बाबा भी हमें याद दिलाते हैं कि अभी तो आप ईश्वर की संतान हो और फिर तो आप दैवी संतान बनने वाले हो। बाबा स्वदर्शन चक्कर अथवा चक्कर को घुमाते रहो, आप ये याद करो आप कौन थे, आज कौन है और कल आप क्या बनने वाले हैं। जब आप इन बातों को याद करेंगे तो आप सोचो कि आपका किस प्रकार से चेहरा होगा, किस प्रकार से संकल्प होंगे, किस प्रकार के आपका बोल और चाल होगा, तो क्या उससे बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती। जब बच्चे को देखा जाता जरूर हर एक कमेंट करता कि हाँ वो फलाने का बेटा है या फलाने की बेटी है, ऐसी ही कहते हैं ना। तो जब हमें कोई देखे तो क्या उनों को ईश्वर की स्मृति आ सकती। जब हमें वो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस की अथॉरिटी और पर्सनालिटी होंगी, तो जरूर उनों को ज्ञान सुनाने के बगैर भी जरूर इस बात की पहचान आ जाएंगी। तो वैसे तो आप सोचो, सही बात है, तो वैसे तो आप सोचो कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल शूद्र से फरिश्ता बन जाए, इम्पॉसिबल। तो बाबा शूद्र से पहले हमें ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों को बैठ करके बाबा हर रोज पढ़ाते हैं। और जब हमें इन बातों का अनुभव होता कि बाप कौन है, हम कौन है, तो आप सोचो कि हमारे हर प्रकार के कर्म में कैसे सहज सहज परिवर्तन हो जाता। नहीं तो कोई भी एक आदत छूटे सहज है, एक आदत भी छोड़ने के लिए मेहनत लगती। चाय पीने की आदत है, छूट सकती? बहुत ही मुश्किल लगता, परंतु इतना बाबा ने हमें बदल दिया, इतना हमारे जीवन में फर्क आ गया, तब जबकि हमने ये बिल्कुल अपने प्यार से अनुभव किया कि बाप कौन है और हम कौन है। निश्चय हुआ कि हम तो देवता थे, परंतु अभी वो एक्सपीरियंस मिलाए, वो अनुभव करें, वो देवताई गुण आत्मा के अंदर जो मर्ज है, उनको हम अब इमर्ज कैसे करें, क्योंकि परमधाम में तो इमर्ज करने की मार्जन नहीं होंगे। और सत्युग में आप आएंगे तो जिस समय आपको पाठ बजाना होगा स्टेज पर, जो संस्कार इमर्ज होंगे तब तक वही आपका प्ले होगा। तो इमर्ज करने का अभी, रिहर्सल करने का समय अभी है। तो जितना जितना आप स्वदर्शन चक्र का भी अनुभव करेंगे, तो आप उस स्थिति में आप वो प्ले अभी फिर से कर सकेंगे। वो अनुभव आपको अथॉरिटी देगा अपने जीवन में परिवर्तन करने का। मुझे याद आता कि कुछ वर्ष पहले बाबा ने स्वदर्शन चक्र के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से, बाबा ने खुद ही जैसे कि मेडिटेशन कमेंट्री दी थी। बाबा के बच्चे कई पुराने बैठे हैं जिन्हों को ये बात याद होंगी, और सारा वर्ष मैं समझती हम लोगों ने उस बात पर बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया था। बाबा ने बिल्कुल कमेंट्री करके, आप परमधाम में हो, फिर परमधाम से आते हो सृष्टि मंच पर देवता स्वरूप में, फिर पूज्य से आप पुजारी बनते हो और अपने पूज्य स्थिति की पूजा करते हो, फिर बाबा आकर के ढूंढ करके आपको अपना बनाते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं, और फिर आप फरिश्तेपन का अनुभव करो, और अभी फिर फरिश्ता उड़कर बस अपने घर पहुंचता। तो बाबा ने, बाबा खुद मेडिटेशन कमेंट्री कराए, तो आप सोचो कि वातावरण किस प्रकार से हो गया था उस समय। सारे हॉल के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस अनुभव कर रहे थे सभी। तो बाबा क्यों ये हमें अनुभव कराने चाहते थे, ताकि हमें वो संस्कार, फरिश्ता स्टेज क्या होती है, आपने सुना है ये शब्द, परंतु आपने अनुभव किया है वो कैसे आत्मा बिल्कुल इस देह के भान से दूर अपना, जो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप, बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे थे, चमकीला ड्रेस। जबकि आपका चमकीला ड्रेस आपके सामने है, तो आप ये स्थूल मोटा ड्रेस, मीन्स इतना हड्डी मांस का पुतले वाला ड्रेस, आप इस भारी भारी ड्रेस को क्यों पसंद करते हो, जबकि आपके सामने वो चमकीला ड्रेस खड़ा है। तो आपने क्या इस बात का अनुभव किया? और जब तक आपने खुद उस बात का अनुभव नहीं किया है, आप फरिश्ता बनकर विश्व की सेवा कैसे करेंगे? तो जबकि हर बात का हम एक्सपेरिमेंट करके विवेक मानता, परंतु हम प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बिगैर कोई भी हमारे पास चीज हाथ में नहीं आ सकती। कितना भी आपको कोई चीज अच्छी लगे, परंतु आपने प्रैक्टिस नहीं की होंगी तो वह आपके पास नहीं रह सकती। तो यदि हमने स्वदर्शन चक्कर घुमा करके, फरिश्ते का अनुभव करके, घर का अनुभव करके, स्वर्ग का संस्कारों का अनुभव करके उनको इमर्ज नहीं किया, तब तक हमारे जीवन के कर्म में परिवर्तन नहीं आ सकता। तभी बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी, और जितना जितना आप अपने पास वो अनुभव जमा करते जाएंगे, वो अनुभव की शक्ति फिर औरों को भी मदद कर सकती, अपने आप ही सेवा होती रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सेवा के लिए, परंतु जो आपका अनुभव है वो औरों को भी मदद करेगा, उन्हों को भी बाबा का परिचय देगा। तो मैं देखती हूं कि कर्म फिलॉसफी की बात तब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल तरह से आती है जब हमने इस प्रकार से स्वदर्शन चक्कर घुमा करके अपने उस हाईएस्ट स्टेज का अनुभव किया होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके कर्म बदलते जाएंगे। अभी भी मैं सोचती हूँ कि माताओं की जो स्थिति आजकल चल रही है संसार में, और 1936 में जो माताओं की स्थिति थी, तो बाबा ने कैसे कार्य किया। बाबा ने उन्हों को बताया कि आप हो शक्ति स्वरूप। उन्होंने ये बाबा का शब्द सुना और उन्होंने उस बात को इमर्ज किया, अनुभव किया कि कैसे आत्मा के अंदर वो शक्ति है, और वो शक्ति स्वरूप बन करके उन्होंने अपनी पवित्रता का धारण किया, उन्होंने अपना सारा जीवन परिवर्तन किया, समर्पण हो गए बस अनुभव की शक्ति से। इतनी महान शक्ति है, अथॉरिटी है अनुभव की। एक और बात मुझे ये सुनानी है, और वो है ड्रामा की, ज्ञान की शक्ति। आपने बाबा के ये शब्द सुने हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, शब्द तो सुने हैं परंतु अनुभव किया है। कदम कदम पर जो बात होती है ड्रामा, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल। बाबा कहते हैं कि ड्रामा के पट्टे पर आप अडोल रहो। जब ट्रेन चलती है तो वो रेल पर चलती है, और यदि वो रेल से उतर जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही नुकसान उसका हो जाता। परंतु आत्मा भी बिल्कुल ड्रामा का पट्टा इस तरह से चल रहा, और हम उससे थोड़ा हिल जाते और ये प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसी न होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो आप सोचो कि ड्रामा एक्यूरेट या हमारा मन जिस प्रकार से चल रहा है वो एक्यूरेट, कौन सी बात एक्यूरेट कहेंगे। हमारा मन तो घूमता रहता, तो वो कभी एक्यूरेट है कभी ना भी एक्यूरेट है, परंतु ड्रामा तो बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहता है, न हिलता है इस तरफ न हिलता है उस तरफ, उसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकती है, जो है जैसा है वो वैसे चल ही रहा है। तो यदि हम अपने को ड्रामा के पट्टे पर सेट करते हैं तो कोई भी बात सामने आएंगी और हमने ये अनुभव किया हुआ होगा कि हाँ ड्रामा एक्यूरेट है, तो फिर कभी भी हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा, हम उस बात को समझ करके अनुभव करके चलते रहेंगे। तो कहेंगे कि हाँ ड्रामा एक्यूरेट है, सचमुच एक्यूरेट है, और न सिर्फ ड्रामा एक्यूरेट है परंतु हम दिल से कहेंगे ड्रामा बहुत मीठा है। दादी कहानी सुनाती है कि एक बारी दादी बैठी हुई थी और बाबा के ज्ञान का मंथन कर रही थी, तो बाबा पास करके गए और बाबा ने कहा, बच्ची तुम मेरी बच्ची की कंप्लेंट क्यों कर रही हो। तो दादी सोचने लगी कि मैं तो किसकी कंप्लेंट नहीं की है। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा मेरी बेटी बहुत अच्छी है, जो कुछ ड्रामा में हो रहा है बहुत ही अच्छा है, तो कभी भी मेरी बेटी का कंप्लेंट नहीं करना। तो ड्रामा के लिए कई बार हम अपने मन में कंप्लेन करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं। कभी किसने कंप्लेन की है मन के अंदर? जरूर मैं समझती, कुछ न कुछ बात की ऐसे कंप्लेन आती ही रहती है। और यदि आती है तो हम उस घड़ी ये बात याद करें कि बाबा ने कहा है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो यदि बाबा किसको टाइटल दे रहा, तो हमको मन में किसी और प्रकार के संकल्प ना आने चाहिए। तो हर सीन एक्यूरेट, उसमें हम अनुभव करके अपने मन को बिल्कुल शांत में एकाग्र करें। तो उसमें जो जितना जितना हम अनुभव करते जाएंगे, उतने आत्मा के अंदर वो अथॉरिटी आती जाएंगी, जो हम भी कह सकेंगे कि हाँ, ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत मीठा है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। और फिर साथ साथ न सिर्फ ड्रामा की सीन, परंतु हर व्यक्ति जो अपना पार्ट ड्रामा में बजा रहा है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। एक्टर को वही पार्ट बजाना होता जो उसको स्क्रिप्ट लिखत मिली हुई होती। यदि उसका कुछ अलग कर देता तो फिर ड्रामा गड़बड़ का हो जाता, नीचे ऊपर हो जाता। तो मुझे नहीं मालूम कि किस एक्टर को कौन सा स्क्रिप्ट मिला हुआ है। तो जो मैं देख रही हूँ, एक एक एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है, तो देख करके आत्मा बिल्कुल अंदर शांत चित बन जाए और हर्षित रहे कि हाँ, ये आत्मा भी अपनी विशेषता अनुसार अपना पार्ट बजा रहा है। तो यदि वो भी बात का हम अनुभव करते जाएं, आप बात को भूल करके आप उसके पार्ट को देखने लगेंगे और उस व्यर्थ संकल्पों में घूम के चले जाएंगे, तो आपको न उसकी विशेषता याद रहेंगी, न ड्रामा की विशेषता, और न आपका मन एकाग्र कब हो सकेगा। परंतु बाबा ने कहा है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो वो पार्ट देख करके बस अनुभव के आधार से हम कहें हाँ, सचमुच बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। तो ड्रामा के ज्ञान का भी और हर एक्टर के विशेषता का भी देखने का, हम इस ड्रामा में पार्ट, सुंदर पार्ट देख करके हम अनुभव से कहें कि हाँ, हर आत्मा को बहुत ही अच्छा पार्ट मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कि ज्ञान हमें बहुत पसंद आता, ज्ञान हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता, ज्ञान हमें बुद्धि को अच्छी तरह से यूज करने का सिखाता, और फिर ज्ञान को हम कदम कदम पर यूज करें तो हमारे अनुभव के आधार से आत्मा के अंदर कितनी शक्ति आती जाएंगी। कई बार दादियां हमें कहती है, हम सभी को, कि आप लोग ज्ञान यूज नहीं करते हो जीवन में। ज्ञान है, परंतु उसको यूज कैसे किया जाता, वो आप कम ही यूज करते। तो जब हम ज्ञान को यूज करते चले, तो उससे हमें जो शक्ति अनुभव होंगी, तो हम कहेंगे कि हाँ, ज्ञान के आधार से हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया है। तो मैं देखती हूँ कि एक एक बात को आप, ये मैंने जो मुख्य टॉपिक्स है बाबा की, उसको उठाई है, परंतु मैंने कई बात डिटेल जो मुरली में आती है, कभी आप वो अनुभव करके देखो। मानो कि जैसे बाबा कहती हैं, बाबा सर्प का एग्जाम्पल देते हैं कि सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई खाल धारण करता। कई बारी आपने ये सुना होगा एग्जाम्पल, परंतु इसकी प्रैक्टिस, मैं आत्मा शरीर से अलग, बिल्कुल ये पुरानी खाल आत्मा अलग हो रही है, अशरीरी होकर बाबा के साथ अनुभव कर रही है। और फिर हाँ, जब दूसरी खाल लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होंगी। आप ये एक्सपीरियंस करके देखो, और यदि आपने ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा तो आप देखेंगे कि इस तन को कुछ भी कष्ट होगा तो आप उस कष्ट में दुखी नहीं होंगे। शरीर को दर्द हो रहा परंतु आत्मा बिल्कुल संतुष्ट होंगी, बाबा का अनुभव कर रही होंगी। आप सोचो, कब जब हम बहुत व्यस्त होते तो ये बातों का हम इतना टाइम नहीं होता जो हम अनुभव करें। और फिर जब शरीर को कष्ट होता उस समय दो बातें हो सकती, हम उस दर्द में ही अपने को लिप्त कर लेवे और हम कंप्लेन करें कि मुझे ही ऐसी क्यों बातें हो रही है, या उस समय हम उसका चांस लेवे कि हाँ, शरीर से अभी नहीं कुछ हो पा रहा परंतु हम अपनी तपस्या उस समय करें। परंतु उस समय ही शरीर अपने तरफ खींचता और उस घड़ी अपने को अलग करना इतना सहज नहीं होता। यदि हमने पहले से ही उस बात का अनुभव किया होगा, प्रैक्टिस की होंगी, तो उस घड़ी शरीर अलग और आत्मा अलग, खाल पुरानी अलग और मैं आत्मा बाबा के साथ अपना अनुभव कर रही हूँ बाबा की प्रेम की शक्ति का। तो आप देखेंगे कि मुरली के अंदर जो बातें आती है बाबा हमें बता रहे हैं कि बाबा ने क्या अभ्यास किया है और हम बच्चे भी कैसे बाबा को फॉलो करके हम अनुभव अपना आगे बढ़ाते जाएं। जैसे मैं समझती कल परसों की मुरली में बाबा के ये महावाक्य थे ब्लेसिंग में, जैसे बाबा ज्ञान सूर्य है वैसे बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य, राइट? तो कैसे हम ये बात का अनुभव करें जबकि हम इस बात पर बार बार उस बात को स्मृति में लाएंगे और दिन भर वो बात हमारे साथ रहेंगी, और जब शांति का मौका बनेगा हम उस बात का हम अभ्यास करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा बाबा कैसे आपको इतनी शक्ति दी है, जो आप भी बाबा की शक्ति को विश्व में फैला करके वो किरणें दे रहे हो और विश्व का अंधकार दूर कर रहे हो। दादी गुलजार ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बाबा का जो ब्लेसिंग है वो हरेक के लिए है, परंतु ब्लेसिंग है जैसे बीज, और उस बीज को पानी देना बहुत ही आवश्यक होता। तो आप पानी कैसे देंगे? बाबा की बात आपने सुनी, आपके मन में वो बीज बाबा ने डाला, परंतु अभी आप पानी देंगे अपने स्मृति द्वारा। बार बार उस महावाक्य को स्मृति में आप इमर्ज करो, और आप जब उसको इमर्ज करेंगे बाबा आपको उसका अनुभव कराते रहेंगे, और फिर वो बात आपके जीवन में प्रैक्टिकल आ जाएंगे। तो बाबा हर रोज कितनी ब्लेसिंग्स देते, और यदि एक दिन की एक ब्लेसिंग भी हम अनुभव करें तो आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स इकट्ठी हो जाए, आपका भंडारा ब्लेसिंग्स से भरपूर हो जाए। परंतु क्या होता कि यहाँ पर इस तिजोरी में अनेक और बातें जमा रहती और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो और बातें हमने अपने पास जमा करके रखी वो हमको खाली करनी होंगी। हम समझते हैं कि उनों को भी हम रखें और फिर बाबा की भी बातों को हम रखें, परंतु नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि संसार के हिसाब किताब की बातें तो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, और वो हमारा सारा दिन वही बातें चलती। बाबा की मुरली तो हम एक घंटा ही सुनते। तो यदि हमने स्पेशल अटेंशन रख करके अपने आप से, क्योंकि जितना हमें अनुभव हुआ है बाबा की शक्ति का, हम चाहते हैं उस अनुभव को और हम बढ़ाएं। तो यदि हम उन बातों को छुट्टी देते हैं, हमको ये बातें अभी ना सोचनी है, अपने पास नहीं रखनी है, उन बातों को छुट्टी दे देवे, फिर क्या होगा कि जो बाबा की बातें हैं फिर हमारे पास अच्छी तरह से फिट रहेंगे, और फिर उन बातों को हम इमर्ज करेंगे। तो जैसे ही आप उन बातों को स्मृति में लाएंगे, आप कहेंगे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, आज जो हम चाहते थे कि हमारे जीवन में बाबा का साथ का अनुभव हो, हमें सुख शांति का अनुभव हो, बस ऐसे ही हमारी जीवन चलती रहे। बाबा ने लास्ट मुरली में हम लोगों से खास ये बात कही, बच्चे आप ये ना कहो कि खुशी कब कब होती। बाबा चाहते हैं कि ये कब कब शब्द को छुट्टी दे दो, विदाई दे दो। तो बाबा अब आने वाले हैं, बाबा देखेंगे एक एक की बच्चे की जन्म पत्री क्या है, एक एक बच्चे की स्थिति क्या है। तो जितना जो कुछ हुआ ठीक है, परंतु अब से भी अपनी तैयारी ऐसे करें जो हमारे चेहरे से, हमारे वाइब्रेशन से बाबा ये देखे कि हाँ, हमने बाबा का बन करके वो अनुभव किस तरह से अपने पास कायम रखा है, और उस अनुभव की शक्ति को हमने कैसे बढ़ाते बढ़ाते हमने अपने को बिल्कुल प्राप्ति से भरपूर किया है। तो मधुबन में ये चांस है, भंडारा खुला है, जितना जो शिव भोलानाथ भंडारे से लेने चाहे लेते रहे, और साथ साथ अपने को ऐसे भरपूर करे जो कभी हमारे अंदर खालीपन न आए, कभी हमारा खजाना कुछ कम न हो जाए, परंतु ये एक ऐसा खजाना है जो जितना आप बांटते जाओ आपका खजाना बढ़ता रहेगा। तो ये जो संगम युग की बहुत सुंदर घड़ियां है, वो बहुत समय तो संगम युग का बीत चुका, बाकी थोड़ा सा बाकी आकर के रहा है। तो ये थोड़े समय के अंदर भी अपने संस्कारों को ऐसे हम भरपूर कर देवे, अनुभव के आधार से जो वो देवता स्वरूप अभी से ही नजर आए। हो सकता? पॉसिबल? एक समझता है कि हाँ संभव है, बाकी नहीं पॉसिबल। अभी थोड़ा थोड़ा जागृति हो रही है जी, अभी कहीं समझते हैं कि हाँ पॉसिबल है जी। तो अभी बाबा की याद में बैठती हैं, और आप अपनी स्थिति को ऐसे बना के रखें कि जो बाबा खजाना दे रहा आप अपने अनुभव में वो धारण करके अपने पास वो जमा रखें। ओम शांति।